स्मृतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं हं सजीवं साद्वैतं
सापदीकं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहकना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनाबन्धु
जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्तमूर्तये
सप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा मुझे बताया गया कि आपने सब मिलकर 1652 ऑफरिंग अर्पण किए गिरिराज गोवर्धन। क्योंकि आज गोपाष्टमी है, जब वो समय जब कृष्ण गाय चरण कृष्ण को गायों की जिम्मेदारी दी वृंदावन में, गाय की पूजा की जाती आज के दिन। ब्रजभूमि की गायों को धन्यवाद देते जिन्होंने गोबर दिया जिससे कि हम पका सके। श्रील प्रभुपाद ने हमें बतलाया है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जानने के लिए कि मानव सभ्यता की धर्म का पालन कितना किया जाए आध्यात्मिक बात एक समाज में, अगर ये जानना है कि कितना धर्म में विकास हुआ है तो कैसे जाना जा सकता है वो, कैसे गायों की रक्षा, गाय की कैसे आदर किया जा रहा है, कैसे उसकी रक्षा की जा रही
है,
क्योंकि हमारे में से अधिकांश लोगों के अपना दूध प्रदान करते जब हम छोटे बच्चे थे, और इसलिए हम उसको स्वीकार करते माँ के रूप में। गाय जो है वो माँ का प्रतिनिधित्व करते जो पुष्टिकरण करने का तरीका स्वभाव और स्नेह, और इसीलिए कृतज्ञता के साथ गाय का आदर करना, न केवल ये ये बहुत गंभीर चीज है। जो प्रकट करता है कि हमारी क्या महत्वपूर्णता है वैयक्तिक रूप से और समाज के रूप में भी, गाय दूध भी दे रही है और यज्ञ करने के लिए घी भी बता, यज्ञ जो है सबके लाभ के लिए, समाज के लाभ के लिए है। कृष्ण भगवद गीता के तीसरे अध्याय में बताते हैं, मैंने देवता, मैंने सारे योनियों का निर्माण किया, मैंने यज्ञ का निर्माण भी मैंने किया, आप इस यज्ञ को करने से ही सुखी हो जाओ, क्योंकि वहीं पर आपको सुख की प्राप्ति होगी। इस कलयुग में सबसे अच्छा यज्ञ जो है वो है संकीर्तन यज्ञ, वो है सच्चे दिल से नाम संकीर्तन करना। लेकिन हम सच्चे दिल से अगर हम नाम का कीर्तन करना चाहते हैं और उसके लाभ अगर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवान ने हमें दिया है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। कृष्ण का एक नाम है गोविंद, इसका मतलब कि वो इंद्रियों को वो आनंद देते हैं, धरती को और गायों को भी प्रसन्नता देने वाले। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च, गाय और ब्राह्मण जो विशेष रूप से कृष्ण को बहुत प्रिय है। ऐसा क्यों है? कृष्ण सब जीवों के प्रति दया दिखाते हैं, सच्चे दिल से जो ब्राह्मण सिद्धांत सिखाते हैं उसका पालन करने से, और उदाहरण को जिससे कि ब्राह्मण रहते हैं, और हम वो ब्राह्मण नहीं बोल रहे जो सिर्फ कि जाति या जन्म से ब्राह्मण नहीं कह रहे। भगवद गीता में बताया गया कि सच्चे ब्राह्मण का गुण के सत्य ज्ञान का शास्त्रों का ज्ञान, भगवान के प्रति भक्ति दिखाना हर तरीके से, वह समाज के नेतृत्व कर रहे, वो हम सबको दिशा दिखाते हैं। ब्राह्मण कृष्ण को बहुत प्रिय है, वो सारी मानवता को मदद करते हैं, कृष्ण के पास पहुंचे मदद करते, जिससे हम सब सुखी हो सके, शाश्वत रूप से। और गायों का आदर करने से गोमूत्र, गाय का दूध और उसके गाय के दूध से छेद बन जाता है, गाय का गोबर जो है उसमें भी इतने सारे लाभ हैं, सारे दुनिया को, सारे मानव समाज को अगर हम समझ सके। भगवान के धाम में सबसे अच्छे लोग को गोलोक कहते हैं, इसका मतलब गायों का लोक, गोकुल जो गायों का स्थान है। कृष्णा ने गोवर्धन धारण किए, जो गायों को पुष्टि देने वाला है। गोपीनाथ का मतलब जो कि स्वामी, जो गोपियों के स्वामी हैं, गोपियों का मतलब जो गाय का, गोपाल का मतलब गोपाल जो है वो गायों का ख्याल रखते हैं। संसिद्धिर हरि तोषिणः, कृष्ण हमें बहुत आसान तरीका देते हैं संतुष्ट करने के लिए, लेकिन अगर हम अपने बुद्धि के स्तर पे समझने का प्रयास करें, अगर हृदय से अगर हम नहीं समझते, जो जीवन के अंतिम उद्देश्य भगवान से आ रहे हैं, हम अपने आप को गलत दिशा में ले जाएंगे और दूसरे को भी गलत दिशा में। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कृष्ण गो रक्षा के प्रतिनिधि, वो अपनी मुरली बजाते, वो गायों मुरली बजाते हैं, गायों की रक्षा करते हैं, और बलराम जी हल धारण करते हैं, जिसका मतलब है कृषि करते हैं, खेती कर जो समाज के पालन के लिए आवश्यक है। पाश्चात्य देश में, पाश्चात्य धर्म में भी, लेकिन हालांकि लोग उस डिटेल में हम जा सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे नहीं। जूद और क्रिश्चियन के सबसे परम पवित्र, इस्लामिक लोगों के लिए परम पवित्र स्थान जो है जेरूसलम है, ओल्ड टेस्टमेंट में जेरूसलम का नाम, उसको प्रॉमिस लैंड बोला, जहाँ पर दूध और शहद, और दूध जो है गायों से आता है। अभी अगर गायों का जैसे ख्याल रखा जाए, लोग दूध नहीं पीते, आजकल लोग दूध नहीं पीते क्योंकि जो डायरी कंपनी जो गायों का दूध लेते, फिर गाय को मार देते, जब दूध कम मिलता है तो गाय को मारते, क्यों हम उसको सपोर्ट करें? क्योंकि वास्तव में पाश्चात्य देश जो मीट इंडस्ट्री नहीं, जो डायरी इंडस्ट्री है वो भी वो गायों की हत्या पर आधारित है। उनसे ज्यादा प्राप्त करने के लिए कैसे क्रूरता से व्यवहार किया जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य वो चाहते थे कि दुनिया में बहुत आदर्श स्थान हो, दुनिया को दिखाने के लिए आध्यात्मिक, आर्थिक और नैतिक कीमत गाय और बैलों की रक्षा के लिए क्या भगवान के संतान के रूप में। और जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से हमारे जो दिमाग ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, और संस्कृत, ये जो संस्कृति जो इनके विचारों पे बनाई गई, इससे सब जीवों के प्रति दया भावना होती है, जिसमें भैंस और बकरी और मछली सब कुछ सब जीवात्मा उसमें जाते, दया की भावना सबके प्रति। कृष्ण ने एक तरीका दिखाया जिससे कि हम दया को जागृत करें। उसका सिद्धांत है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं उसको आदर करना और गाय का आदर करना। तो गोपाष्टमी का ये महत्व है। शिला प्रभुपाद जी समझाते हैं गायों की रक्षा करना और बैल की रक्षा करना, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मारना नहीं उनको, इसका मतलब उनको सुखी रखना। जैसे हम सब हैं, स्नेह से वो सुखी होते, प्रेम से सुखी होते। पाश्चात्य देश में लोग जो है कुत्ते और बिल्ली का अच्छा ख्याल रखते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा बालक, मेरा छोटा बाइक, उनका जो है एक कछुआ था, कछुआ का पालन करते थे जो बहुत छोटा थे, उसका नाम लकी रखा था। वो छोटे कछुए से बहुत प्रेम करते, कछुए को भोजन देते। कछुआ भी जब प्रेम से व्यवहार करने से आदान प्रदान, जैसे हम सबको स्नेह अच्छा लगता है। जब लकी की मृत्यु हो गई, मेरे छोटे भाई बहुत दुखी हो गए। उनके लिए अंतिम संस्कार में उनकी समाधि बनाई गई और कहीं पर वो कहीं ना कहीं है। और कुत्ता जब पालते हैं खाली उनको उंगली आपकी पसंद, ऐसा नहीं है। कुत्ते को भी ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए। वो प्रेम आत्मा का स्वभाव है, सब बद्ध जीवों में वो स्नेह चाहते हैं। और हम दूसरों के लिए कोई चीज करते हैं, उस स्नेह को प्रकट करने के लिए हमेशा करते, और लोग हमारे इरादे को समझ पाते और उसी से लोगों को संतुष्टि प्राप्त होती। श्रीला प्रभुपाद जी एक फार्म कम्युनिटी की बातचीत कर रहे थे और वो बोले कि जब हम गाय को बुलाते हैं वो दौड़ते हुए आते हैं क्योंकि वो बहुत सुखी हैं, वो दूध देना चाहते हैं। और वास्तव में ये सत्य है। मैं वहाँ पर था, मैं गायों का दूध निकालता था। हम गायों को पुकारते थे कि गाय को पुकारते और उनको अच्छे घास देते, अच्छे खाने की अच्छी चीज़ देते, उनको बाल लगाते, उनका पालन करते, उनसे बातचीत करते और वो इतने सुखी होते थे। और हम गाय को गौशाला में एकदम हम कॉल बुलाते थे। उस समय मुझे माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है, मैं जोर से आवाज करता था। जहाँ भी थे वो लौटते आते थे, उनको पता था कि उनको प्रेम मिलेगा, अच्छा प्रसाद मिलेगा, स्नेह मिलेगा और वो दूध देने में, वो दूध देने में बहुत खुश थे। ये आदान प्रदान जो है, ऐसे कृष्ण और बलराम अपना शाश्वत अपनी लीलाएं बताते हैं श्री राधा रानी के। वो गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है जो गोपीनाथ प्रिय है। आज गोपाष्टमी का दिन है, हम इस पर ध्यान करते हैं। आध्यात्मिक धाम के सत्य पर ध्यान लगाते हैं। और ये इतना सरल तरीका है जिससे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। और कृष्ण, जब कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, वही हमारे जीवन की सफलता है। अकेले और समाज के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जाने क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गाय रक्षा का जो सिद्धांत है वो एक मूल सिद्धांत है, दया की भावना, जिसका आधार है कि कृष्ण को प्रसन्न करना। तो यहाँ गोवर्धन में हम अपनी परिक्रमा को जारी रखेंगे।
राधा कुंड,
मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन धन्यवाद। मैं जब पूछ रहा था कि तो खाली खांसी की आवाज सुनाई पड़ी। उद्धव कुंड से हम राधा कुंड के प्रवेश करते हमारे दाईं ओर एक छोटा सा मंदिर, शिव जी का एक मंदिर है और एक कुंड है जिसको शिव खोरी बोलते हैं। पुराणों में इस स्थान के बारे में कहानी बताई गई है। वे बताती है कि कैसे उस समय एक लोमड़ी थी जो पानी पी रहे थे, शिवखोरी से जल पी रही थी। जनरली लोमड़ी जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध मशहूर नहीं है, जानवरों में भी ज्यादा प्रिय नहीं है, और जहां तक मैं देख सकता तो लोमड़ियों में भी उतनी प्रिय नहीं है। जब कोई व्यक्ति जब बहुत क्रूर व शरारती कोई व्यक्ति, जब वो चालाक, उसको हम लोमड़ी कहते हैं। जब कोई बहुत स्वार्थी होता है, चालाक होता है अपने स्वार्थ के लिए, वो वेट करते हैं कि कोई कुछ मर जाए तो उसका मांस खाना चाहते हैं। वो बहुत भयानक आवाज भी करते हैं। अब मायापुर में कभी रात्रि के समय जो लोमड़ी की आवाज सुनाई पड़ती है, ये लोमड़ी की आवाज है। और सब एक साथ कर रहे होते हैं तो बहुत भयानक लगते हैं। बच्चों का स्वभाव है, अगर कोई बच्चे उनको परेशान करते, अमेरिका में ऐसा था, पर्वत में दाल दिखाई नहीं पड़ता ऐसा, कोई अगर मोटा हो कमजोर हो तो उसको पिटाई करते हैं, उसको मारते हैं लड़के। मैं लड़कियों के यार ध्यान नहीं देता, लड़के हमेशा ऐसे। तो जो लोमड़ी है जो वो जातियों में जो जानवरों में भी जाति से निकाल भी जाती है, तो ये लोमड़ी थी वो पानी पी रही थी शिवखोरी में। और छोटे बच्चे ने एक लोमड़ी को देखा, वो छोटे लड़के थे, वो उस लोमड़ी को तकलीफ देना चाहते, वो पत्थर फेंकने लगे, जैकल रोने लगे, इधर उधर भाग दे, सब जगह घेर ली, तो उसको मारने लगे, लकड़ी से मारने लगे, उसके सिर उसके हड्डी और चिल्ला रही थी और किस तरीके से वो दौड़ते गए और उसको एक जमीन में एक होल दिखाई पड़ा, उसके अंदर घुस गई और छोटे बच्चे जो हैं छोटे बच्चे चाहते थे कि उसको बाहर निकालने के लिए उन्होंने चारों ओर से एक लकड़ी लिया, लकड़ी लगा के होल के ऊपर लकड़ी रख के उसको आग लगा दी। जब आप प्रसाद बना रहे जब धुआं आंखों में गए थे तो कैसे रहता है फेफड़े, आप सोचो होल में है और होल के आसपास सारे ऑक्सीजन, एक धधकती हुई अग्नि है और अग्नि आ रही, लोमड़ी चिल्ला रही तकलीफ में, वो होल के अंदर रह सकते, बाहर भी निकल सकते, अंदर भी रह सकते, चिल्लाने लगी। और उस समय श्री राधारानी अपने सखियों के साथ राधा कुंड से आ रहे थे और राधा रानी इस जगह की चित्कार आवाज को सुना, श्री राधा रानी ललिता सखी को बोला और राधा रानी की शिक्षा गुरु ललिता हैं और उनके सबसे परम सखी भी हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी को दुखी नहीं रहना चाहिए, मेरा स्थान राधा कुंड में कोई दुखी नहीं होना चाहिए, जाओ देखो कौन है वो, जाओ उसको मदद करो। ललिता सखी दौड़ते हुए गए और उसने देखा कि छोटे बच्चे इसको मारने के लिए तैयार है ललिता सखी ने सबको दूर भगा दिया, चलो चलो सब बच्चे चले गए, अग्नि को बुझा दिया और लोमड़ी को बाहर बुलाया, लोमड़ी होल से बाहर निकली, वो रो रही थी, उसके अंग कांप रहे थे डर के मारे, बहुत चिंता में, बहुत दर्द में थे। ललिता उन्होंने श्री जैकल को श्रीमती राधा रानी के पास लेकर गए, श्रीमती राधा रानी ने वो लोमड़ी के सिर के ऊपर हाथ रखा और वो लोमड़ी उनके चरणों में गिर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, एकदम कृतज्ञता और निसहायता के आंसू आ रहे थे। श्रीमती राधा रानी उन्होंने लोमड़ी को आशीर्वाद दिया, उनको आशीर्वाद दिया कि आप भगवान के धाम में दासी बने, फिर उनसे ऊंची स्थिति को प्राप्त की भक्ति का, श्री राधा रानी की कृपा से वो लोमड़ी क्या है वो बद्ध जीव का प्रतिनिधित्व कर, वो जीव जो किसी न किसी प्रकार से जो अपने आप को गिरा दिए, हम कृष्ण के अंश हैं, हम ब्रह्म हैं, हम शाश्वत हैं, ज्ञान से पूर्ण हैं, हमें भगवान के धाम में होना चाहिए, रासलीला में होना चाहिए, लेकिन उसको छोड़कर हम लोमड़ी की तरह हम बस तो भोग करने का प्रयास कर रहे हैं या वहाँ ढूंढ रहे हैं और लोमड़ी दूसरों से छुराते हैं। सर्वलोक महेश्वर, सब कुछ भगवान की संपत्ति, कृष्ण की संपत्ति, हम भगवान से छुराते हैं, एक दूसरे से छुराते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, जो हमारे में से किसी का भी नहीं है उस पर लड़ाई कर रहे हैं, लोमड़ी की तरह। ये होल ये संसार का भौतिक अस्तित्व की जगह माया के प्रभाव से, और ये अग्नि जो है जो संसार की दावा नल की अग्नि, जो संसार की अग्नि है,
three miseries of the body, mind, miseries caused by others,
ये सब के जो अग्नि जो जो पर आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख जो है ये अग्नि के समान है. मृत्यु अग्नि की तरह है. वो समय है जब शारीरिक और मानसिक रूप से शरीर पे जो है आग लग जाती और हम उस धधकती अग्नि में नहीं रह पाते और आत्मा जो है बहुत दुख में उसको भगा दिया जाता है एक बद्ध जीव के लिए. एक भक्त के लिए भक्ति की अग्नि प्रकट होती और आत्मा शुद्ध हो जाती और मृत्यु के समय मुक्त हो जाती. इसके दरवाजे आध्यात्मिक जगत के दरवाजे खुल जाते. ललिता सखी गुरु के समान बड़े संतों के समान राधा रानी के द्वारा भेजे जाते हैं जहाँ पर हम हमारे घर में जब भौतिक दुनिया में जल रहे हैं और हमें सिखाने तरीका सिखाने का जैसे हम होल से बनकर से और हमें कृष्ण की ओर ले आते और श्रीमती राधा रानी के पास ले आते. और अगर हम बुद्धिमान हैं लोमड़ी की तरह तो हम कृतज्ञ तो हम कृष्ण को समर्पण में जाते हैं और हम जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं. शिव खोरी यह स्थान है जो प्रतिनिधित्व करते हम सबके लिए इससे आशा होती है अनंत आशा. जो भी हम हैं हमने जो कुछ भी किया हो जितना भी हमें समय हमारे लिए बचा हो चाहे हम छोटे बालक हो और 70 80 90 वर्ष हम सब के लिए अनंत आशा है. महान गुरु शिला प्रभुपाद पूरे दुनिया में भ्रमण किए हमें ढूंढने के लिए होल हमें राधा रानी के चरण कमलों में ले जाने के लिए. अगला स्थान जो है वो है मालियाहारी कुंड. श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक सुंदर किताब लिखी उसका नाम है मुक्त चरित्र जिसमें इसका वर्णन किया गया. एक बहुत सुंदर लीला जो वहाँ पर होते इस कुंड में लीला होती है. इस कुंज में यह मालिया कुंड के पास में श्री राधा रानी और गोपियां और मोतियों की लड़ी बना रहे थे अपने गायों के लिए. कितना देखिए सुंदर है जो सर्व लक्ष्मी है जो लक्ष्मियों के भी स्रोत है वो मोतियों की माला बना रहे अपने गायों के लिए अपने सखियों के साथ. कृष्ण वहाँ पर आए और कृष्ण ने कहा कि उसमें थोड़े मोतियाँ जो है मेरे गाय के लिए दे दो. तो कृपया समझो ये रास्ता है बहुत ही घनिष्ठ आध्यात्मिक प्रेम के घनिष्ठ लीलाएं हैं और तर्क वितर्क जो है वो प्रेम को प्रकट करने का एक तरीका होता है आध्यात्मिक धाम में कभी कभी. कृष्ण के प्रसन्नता के लिए गोपियों ने कहा हमारे पास और मोतियां हैं नहीं. कृष्ण ने कहा कुछ तो दे दो मुझे कुछ मोती दो. ललिता सखी ने मैं आपके लिए मोती ढूंढ और ध्यान से देखा और नीचे ढूंढा एक मोती का छोटा सा भाग था और वो कृष्ण को दे दिया. बोले ये तुम्हारे गाय के लिए. और कृष्ण बोले कि आपसे ज़्यादा अच्छी मोतियाँ मैं पैदा करूँ. कृष्ण यशोदा मैया के पास गए, नंद महाराज के पास गए और बोले कि मेरे को मोतिया दो, मैं जमीन में मैं मोतियों को डालूंगा, उसमें गाय का दूध डालूंगा और मैं पेड़ उगाऊंगा, मोतियों का पेड़, और उसके सुंदर सुंदर जो फल आएंगे वो बहुत सुंदर फल होंगे, जिससे मैं माला बना सकता हूँ अपने गायों के लिए, मोतियों की माला। यशोदा मैया ने कहा कि मोतिया जो है जमीन जमीन से नहीं उगते, आपने देखा है कि आपके पिता नंद महाराज गेहूं को डालते हैं, सब्जियों को डालते हैं, ये सब बीज, लेकिन मोतिया जो समुद्र से आते हैं वो जमीन पर। कृष्ण बोले कि मैं सर पे तक, मेरे को बस मोतियां दो, मैं सर पे तक, मुझे विश्वास है कि उगेंगे। यशोदा भाई वो जानते थे क्यों नहीं उगेंगे, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उसने बहुत मूल्यवान मोतियां दे दी। आप में से कितने माता हैं जो अपने बच्चों को बहुल्यमान मोती दे दोगे जमीन में डालने के लिए। यशोदा मैया का ये प्रेम है। कृष्ण ने मोतियां डाली और गोपियों के पास गए राधा रानी के नेतृत्व और उनसे दूध मांगा और वो बोले कि क्योंकि आप उनको दूध नहीं देने वाले, ये तो दूध की बर्बादी है, अपनी माँ से दूध लेकर रहे। और यशोदा मैया कृष्ण समय का गुण था कि कृष्ण जो भी चाहते हैं, चाहे वो कोई बुद्धिमान का विचार हो या नहीं हो, चेतना की बहुत ऊंचा स्तर है, तो कृष्ण जो है जमीन को गायों से दूध लेकर जमीन में डाल रहे थे और थोड़ी देर बाद थोड़े थोड़े पौधे निकलने लगे एकदम अविश्वस। और यशोदा मैया ने देखा सुंदर पौधे और कृष्ण ने गोपियों को बताया सुंदर सुंदर, सब बोले कि ये तो कांटों का होगा। और कुछ दिन बाद और वो लताएं बन गए थोड़े दिनों बाद पेड़ की तरह और सुंदर, और एक ही हफ्ता में और बहुत सुंदर मोतियों की लड़ी बन गई और मोतियां जो है बहुत सुंदर थे, अलग अलग कलर चमक रहे थे। और यही नहीं, वो बहुत सुगंधित भी थे, उनके सुगंध में ही नशा था। क्या आपने कभी आपने देखा है कोई सुगंधित मोती हो? ये वृंदावन है, ये मोतियां इतने बड़े थे, इतने अद्भुत थे और इतने प्रकाशमय थे। गोपियों को अनुभव दिलाने के लिए कृष्ण ने सारे सुंदर मोती से मालाएं बनाई और ग्वाल बालों के डाले, सारे गायों को मोतियों के माला पहनाए, बैलों को और बकरी और भैंसों को माला पहनाए मोती और भेड़ियों को पहनाए और मोरों पर माला डालने लगे और गोपियों को थोड़ा दिखाने के लिए। और वो जो सुंदर मोतियों की माला है वो जो है वो बंदरों में भी डालने लगे और बंदर इतने प्रसन्न हो गए। और गोपियों ने कभी माला देखा है, उन्होंने कृष्ण से पूछा कि हमको भी मोती है, तो कृष्ण से कहा मैं आपको नहीं दूंगा, अपने स्वयं का स्वयं उगाओ। उन्होंने बोला कि हम सब उगाएंगे, आप ज्यादा अच्छा उगाएंगे। तो श्री राधा रानी और गोपियों ने अपने माता पिता के पास बोले कि आप तो माता पिता से कुछ मोतियां लेकर और जितने आभूषण थे वो सब हाथ में लिए और माता पिता के मोतियां जमीन में डाले, उसको पानी डाल रहे थे दही से और घी डाल रहे थे और दूध उसके ऊपर डाल रहे थे उगने के लिए। और कुछ दिनों के बाद कांटों के पेड़ आने लगे, कृष्ण हंस रहे थे और गोपियां सोच रहे थे कि अभी हम क्या करेंगे, हमने हमने जो है माता पिता की मोतियां ली, हमें कुछ देना चाहिए, हमारे पास वापस देने के लिए भी कुछ नहीं। तो वो बहुत मुश्किल स्थिति में थे, कृष्ण के पास गए और कृष्ण से बात करने लगे, कुंज के पास गए, राधा रानी छिपे हुए थे, श्री कृष्ण ने देख रहे थे और सारे गोपियां जब कृष्ण से बार्गेनिंग कर रहे थे कुछ मोतियों को प्राप्त कर जिससे माता पिता को वापस कर सके, बार्गेनिंग होने लगा, भाव होने लगा और वो स्टेलमेट यानी कोई सोल्यूशन नहीं हो सका, कृष्ण देने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर बाद में कृष्ण ने अपने हृदय को प्रकट किया, उन्होंने सुंदर डिब्बे बनाए और अपने हाथों से अच्छे अच्छे मोतियों ने एकत्र किए जो दुनिया में देखे हैं और इन मोतियों को हर एक बॉक्स में डाले, वो सब कीमत से परे थे और अपने हाथों से उन्होंने राधा रानी का नाम डाला और हर एक गोपियों का नाम डाला और सुबह से मधुमंगल से उन्होंने ये डिब्बे उनको प्रदान किए और गोपियों को जब ये मिला कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। मोतियां ने ये प्रेम की बात है, मोतियों के ने जो ये प्रेम की मोती राधा रानी ने कृष्ण के लिए प्रसाद बनाया, कृष्ण संतुष्ट हो गए। रघुनाथ दास गोस्वामी ये सुंदर लीला हमें बताते हैं जो राधा और कृष्ण के बीच में हुए, ये एक खिड़की के समान है। हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के राज्य के बारे में सुनते हैं, सर्वव्यापी परमात्मा सर्वव्यापी ब्रह्म के, लेकिन आध्यात्मिक धाम में वास्तव में क्या हो रहा है, वो प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, शुद्ध मासूम प्रेम का आदान प्रदान। और हम प्रार्थना करते हैं, हम रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं, वृंदावन भूमि और गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं और वैष्णव से कि सबसे परम श्रेष्ठ मोती वो ज्ञान की कैसे कृष्ण को संतुष्ट कर सके, हमारे हरेक शब्द और वचन और क्रिया से कैसे कृष्ण को प्रसन्न करे वो हमें प्रकट हो। दुनिया के सबसे बड़ा खजाना प्रेम भक्ति प्रेम वो हमारी सबसे बड़ी अभिलाषा रहे, वही हमारा अंतिम लक्ष्य बना रहे। वो मोती जो है वो मणि जो है सबको बांट रहे, दूसरों को बांटना है वो हृदय की सबसे बड़ी प्रसन्नता है। और फिर हम श्री राधा कुंड में प्रवेश करते हैं। आदि पुराण में बताया गया कि राधा कुंड गोलोक वृंदावन में कैसे प्रकट हुआ आध्यात्मिक धाम में, उसमें बताया गया कि श्रीमती राधा रानी श्री श्याम सुंदर वो गोलोक वृंदावन में सुंदर आसन में बैठे हुए थे जंगल में, अचानक कृष्ण जो का प्रेम जो राधा रानी के प्रति प्रेम जो इतना ज्यादा बढ़ गया वो उनकी चेतना में इतने गहराई से प्रवेश किए कि कृष्ण का रूप जो है राधा रानी का रूप बन गया और वो पुकारने लगे कृष्ण 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 पुकारने लगे और कृष्ण जो राधा रानी के भाव रूप में जंगल में भ्रमण करने लगे। वो कृष्ण को पुकारने लगी और इसको देखकर श्रीमती राधा रानी इतने कृष्ण के विचार में इतने मग्न हो गए, उन्होंने कृष्ण को धारण किया और वो पुकारने लगी, राधे राधा राधे कहाँ पर है। और वो जंगल में चले और उस इस तरह से गोपियों को पता नहीं था क्या करें। राधा रानी कृष्ण के रूप में थे, राधा रानी के पुकार रहे थे और वो कृष्ण के पास गज रानी के रूप में थे और उनसे बताया कि आपको मदद करनी होगी श्रीमती राधा रानी के, ये उसकी अवस्था है। और फिर एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई पड़ी योगमाया बोली और बोले कि उनके मंत्रों का जप करके राधा रानी को पुकारो। और उन्होंने मंत्र बोला और वो आए और कृष्ण हाथ जोड़ करके श्रीमती राधा रानी के प्रेम से विजय होकर और वो बोले कि क्योंकि मेरे कारण अपने इतने विरह के आंसू बहाए हैं और मैंने भी वही किया है। और जस्ट देखो ये जो आंसू हैं जो मेरे प्रेम के प्रति है, एक सरोवर को भर दिया है जिसको राधा कुंड कहा जाएगा। और जो मैंने आंसू बहाए हैं आपके प्रेम के विरह में, उसमें एक और कुंड बढ़ गया है जिसको श्याम कुंड कहा जाएगा। और जो भी इन कुंडों में स्नान करेगा, जो आपके कुंड में स्नान करेगा, उसको वैसा ही प्रेम मिलेगा जैसा आपका है मेरे प्रति। और फिर श्रीमती राधना ने राधा कुंड में स्नान किया, वो कृष्ण के रूप में थे और वो स्नान करने के बाद राधा रानी कृष्ण जो राधा रानी के रूप में श्याम कुंड में स्नान किया और फिर से वो कृष्ण बन गए। और राधा कुंड और श्याम कुंड के तट के ऊपर गोलोक में शाश्वत रूप से बहुत सबसे ज्यादा घनिष्ठ प्रेम की लीलाएं हो रही, हमेशा हो रही। इस दुनिया में श्रीमद् भागवत में बताया गया है बहुत अद्भुत सुंदर चीज, बहुत कठिन के समय से बहुत ही अच्छी चीजें प्रकट होते हैं। मथुरा में कंस निवास करता है, कंस इतना अभिमानी था, इतना कामी था और इतना लोभी था, क्रोधित हिंसक था। वो अपनी बहन के सिर को काटने को तैयार था अपने आप के स्वार्थ के लिए, डर के मारे अपने पिता को जेल में डाल दिया जो उनके पिता की सारी संपत्ति सब कुछ चुरा लिया। कई बच्चों की भी हत्या कर रहे थे। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि वो भोक्ता बनना चाहते थे, वो ईश्वर बनना चाहते, वो मालिक बनना चाहते। कभी कभी बड़े बड़े राक्षसों को भेजते, वो सब मारे गए थे। कंस अरिष्ट के पास गए और उसको आज्ञा दी। उन्होंने देखा कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास गाय चरा रहे और जाओ कृष्ण को सब कुछ नाश कर दो। अपनी अचिंत योगिक शक्ति सिद्धि से अरिष्टा उसने एक विशाल बड़े बैल का रूप धारण किया। वृंदावन में जो कुछ कुछ बैल है डर लगता है जब रास्ते, वो डर लगता है पता नहीं वो क्या करेंगे अगले। आप इस बैल की कल्पना, अभी जो बैल देख रहे हैं तो अच्छे हैं, ये बैल इतना बड़ा था, इतना बड़ा कि उसके पीठ जो है पर्वत के समान ऐसा लग रहा था कि बादलों को स्पर्श कर रहे। उससे बड़े बड़े विशाल सिंह थे उसकी आंखें जो कोयले के समान लाल थी। वो वृंदावन में मथुरा से छलांग लाके आ रहे, गोवर्धन की तरफ आ रहे थे। और जैसे वो आ रहे थे, इतने भारी बन गए, इतने हिंसक, इतने क्रोधित थे, वो भूकंप पैदा कर रहे थे, धरती कांप रही थी, और वो चिल्लाते थे, वो इतनी जोर से गरजते थे जैसे हजारों बिजली कड़क रहे, और उसकी आवाज जो है भूकंप के साथ, उसके भूकंप के साथ उतनी जोर से आवाज आ रही थी, सब लोग डर के घबरा गए थे। इतने सारे गाय थे और गोपियां जो स्त्री गर्भवती थे, उनके उनके बच्चों के गर्भ में मृत्यु हो गई। ये बहुत ज्यादा ही था, सब कुछ कांप रहा था, सब कुछ विध्वंस हो रहा था एक बैल के कारण जैसे प्रवेश कर रहा था। सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास, आप मदद करो नहीं सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कृष्ण बोले किसी की चिंता मत कर, मैं आपको मदद करूंगा। और कृष्ण आए, गोवर्धन से ज्यादा दूर नहीं, गोवर्धन के तट के ऊपर, और अरिष्टतुर की तरफ देखने लगे, फुराटने लगे, हे राक्षस आपको क्या अधिकार है इतनी चिंता पैदा करने, आप इन निर्दोष प्राणी को क्यों कष्ट दे रहे हैं? आज मैं आपका सामना करूंगा, मैं तुमको यमराज के मृत्यु के दरबार में भेज दूंगा। और जब अभिमानी व्यक्ति को कोई छोटा बालक चैलेंज करता है, वो और भी क्रोधित हो गया रिश्ता से। और कृष्ण उसको और क्रोधित करने के लिए अरिष्टासुर के रास्ते पर खड़े थे। उन्होंने अपनी भुजा को अपने सुबल के मित्र के ऊपर रखा और वो इंतजार कर रहे थे। वो एक बेस्ती है। अरिष्टासुर अपने सिर को नीचे करके और उसके बहुत विशाल सिंह को सीधे कृष्ण की तरफ मोड़ के और उसकी आंखें जो ऊपर तरफ देख रही थी, कोयले की तरह लाल लाल धुआं निकल रहा था, नाक से भी धुआं निकल और सब कुछ गंदी चीजें निकल रहे थे। जोर से गरज रहे थे, अपने पूरी शक्ति के साथ गरज रहे थे, और छलांग लगाते लगाते अंदर है। जब वो कृष्ण के पास पहुंचे, कृष्ण अपने मित्र के साथ ऐसे बैठे हुए, कृष्ण बिल्कुल बिना किसी तकलीफ के अपने दो कमल जैसे हाथ से उसके ऋषासुर के सिंह को पकड़ लिया, उसको गोल घुमाया, उसको दूर फेंक दिया। अरिष्टासुर गोल गोल गिर के गिर पड़ा, 18 कदम पीछे जाके गिर गया, वो बेहोश हो गया। अरिष्टासुर अपने होश आने के बाद, और अब वो और भी ज्यादा क्रोधित थे, सैकड़ों गुना ज्यादा क्रोधित और हिंसक बन गए, क्योंकि उसकी बेइज्जती की गई थी। वो फिर से चिल्लाने लगे, कृष्ण की तरफ आए, और कृष्ण ने फिर से सिंह पकड़े और उसको उठा फेंक दिए, अपने चरण कमल से उसको मारने लगे, उसको लात 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 मारने लगे, बार बार लात मार, और भयानक बैल को वैसा लग रहा था जैसे कि एक पोंच से जो कपड़े को जैसे हम पोछा लगाते हैं, हम उसके बाद में पानी निकालते हैं, उसको लात मार रहे थे, मार रहे थे, और अरिशा से चिल्ला रहे थे, दर्द के मारे चिल्ला रहे थे, उसकी आंखें जो है सॉकेट से बाहर निकल रही, वो अपने पीठ पर गिरने लगी, अपने लातों को मार रहे थे जोर जोर से, और श्रीमद् भागवत के अंदर वो मल और मूत्र दोनों एक दूसरे के साथ सब जगह पर कर रहे थे बिना किस, वो बड़ा लज्जित करने वाला। और कृष्ण उसको खींचा, उसका एक सिंग निकाला, उसको सिंग से उसको अंदर उसके सिर में डाल दिया और ऋषासुर की मृत्यु हो गई। देवताओं ने फूलों की बरसात की और वृंदावन में सब लोग बहुत सुखी हो गए। शाम के समय जब कृष्ण गोपियों से मिलने के लिए आए, श्री राधा रानी ने कि हम तुम्हारे साथ संग नहीं कर सकते, आपका स्पर्श भी नहीं प्राप्त कर सकते। कृष्ण ने कहा क्यों? बोले क्योंकि आपने एक बैल की हत्या की। एक बैल जो है वो पुरुष गाय है, आपने गाय की हत्या की है। कृष्ण ने कहा कि वो असुर था, वो एक असुर था, वो सबको तकलीफ पैदा कर रहा था, वो पूरे वृंदावन को नाश करने वाला है, बड़ा हिंसक था, भयानक असुर था। तो बोला कि हो सकता है वो सही है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो गाय था, एक अगर आपने आपको शुद्ध बनाना चाहते हो तो आपको वो सारे तीर्थों में जाकर स्नान करना है, पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं सब में स्नान करना होगा। कृष्ण ने मुस्कराए, कृष्ण ने कहा ठीक है मैं करूँगा, मैं सारे तीर्थों को यहीं पर बुला लूँगा। कृष्ण ने अपने चरण कमल से उन्होंने एक लात धरती पर लात मारी, अपने पैरों की एड़ी से लात मारा और छोटा सा गड्ढा बनाया, और फिर उन्होंने सारे तीर्थों को वहाँ पर बुलाया और सब ने आके कुंड भर दिया, वो एक कुंड बन गया। और जस्ट दुनिया दिखाने हर एक तीर्थ जैसे भगवान ने बताया प्रकट करने के लिए, सब हाथ जोड़कर आकर मैं पुष्कर हूँ, मैं गोदावरी हूँ, मैं सरायू नदी हूँ, मैं अयोध्या हूँ, मैं गंगा यमुना हूँ, सब हाथ जोड़कर अपने आप को परिचय देने लगे और एक एक करके सब कृष्ण के पास में आए और सब कुंड को भर, और कृष्ण ने स्नान किया बड़े खुशी से और बाहर आए और गोपियों को बताया कि आपने एक असुर का साइड लिया है, इसलिए आप प्रदूषित हो गए। ये इतना सुंदर कुंड है, आपको भी इसमें स्नान करना चाहिए और शुद्ध हो जाना चाहिए। और राधा रानी ने कहा कि हम आपके कुंड में स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बैल की हत्या का फल है, हम अपना खुद का कुंड बनाएंगे। और उन्होंने देखा कि अरिष्टासुर के जो पैरों का निशान देखा, और उन्होंने बंगड़ी लेकर उसका गडाई गडाई गड्ढा को खोदने लगे और बहुत सुंदर कुंड बनाया। और कृष्ण ने कहा कि मेरा जो तीर्थों का जल है वो ही आपके कुंड को भर देगा, ये आपने बनाया वहीं पर दिया जाए। तो बोले नहीं, हम मानसी गंगा से पानी लेकर आएंगे। और श्रीमती राजरानी ने ऐसे एक बड़ी पंक्ति बनाई, हजारों हजारों गोपियां एक लाइन बनाई मानसी गंगा से लेकर अरिष्टग्राम से, यानी राधा कुंड से लेकर मानसी गंगा गोवर्धन तक लाइन बनाई उन्होंने। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मेहनत को देखकर पसीना आ रहा है, उनके लिए असहनीय था, तो उन्होंने सारे तीर्थों श्याम कुंड को पुकारा और सारे तीर्थों का मूर्तिमान स्वरूप जो है वो प्रकट, वो एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और राधा रानी के सामने और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण किए। ब्रह्मा भी और शिव भी और लक्ष्मी भी, कोई भी आपकी महिमा को नहीं जान सकता, सिर्फ कृष्ण ही जानते हैं आपकी महिमा को पूर्ण रूप से। और कृष्ण जो है आपके प्रेम से विजयी हो जाते हैं, कृष्ण आपकी सेवा करना चाहते हैं। और हमारे इतना सौभाग्य है कि हम आपके सामने आपसे भीख मांगते हैं, कि अपने हृदय से हम भीख मांगते हैं कि हमारी एक ही इच्छा है उसको पूरी कर दो। श्रीमती राधा रानी जो हम हमेशा अनुकूल उस व्यक्ति के लिए उनकी शरण गति को स्वीकार करते हैं। राधा रानी ने पूछा आपकी इच्छा क्या है, तो उन्होंने राधा रानी से कहा कि हमारा जीवन बहुत भाग्यशाली माना जाए और सफल माना जाएगा अगर आप हमें अनुमति देते हैं कि आपके कुंड को हम अपने जल से भर दें। और श्री राधा रानी ने कहा कि आप आइए, जरूर आइए, और जो सारा जल जो श्याम कुंड जो है वो बाढ़ की तरह आगे बढ़ा और राधा कुंड भर दिया। और कृष्ण ने जब देखा और कृष्ण ने कहा श्रीमती राधा रानी जैसे तुम मेरे को बहुत प्रिय हो आपका कुंड भी मेरे को बहुत प्रिय है, ये कुंड भी मुझे बहुत प्रिय है जबकि प्रेम का स्वरूप है जो कि इस आपके कुंड में एक बार भी स्नान करता है उसको आशीर्वाद मिलेगा। आपका जो प्रेम है मेरे प्रति वैसे है प्रेम। और राधा रानी ने कहा कि श्याम कुंड का जल मुझे बहुत प्रिय है और मैं उस कुंड में स्नान करूंगी और लाखों लाखों ऋषि मारे जाए मैं उसे कुंड में स्नान करूंगी और जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उसको विशेष आशीर्वाद मिलेगा, उसको दिव्य प्रेम की प्राप्ति होगी। उसके बाद जब चंद्रोदय हो रहा था ये बहुलाष्टमी के दिन हुआ, राधा रानी का जन्म राधाष्टमी को हुआ और राधा कुंड प्रकट हुआ बहुलाष्टमी के दिन जो आठवां दिन है कार्तिक महीने के आठवें दिन। और हर रोज 6 घंटे के लिए अष्टकाल्य लीला के राधा कृष्ण और उनके सारे पार्षद जो है वो वहाँ पर राधा कुंड में लीला करते हैं, राधा कुंड में लीला करते रहते हैं। कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने उनको ये प्रकट हुआ, राधा कुंड की महिमा प्रकट की गई, उन्होंने श्याम कुंड खोज के निकाला। लेकिन समय के बाद हजारों हजारों साल बीत गए, हालांकि शास्त्र तो महिमा का गुणगान करते हैं, वास्तविक कहाँ पे राधा कुंड लोगों को पता नहीं था। और जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा और कृष्ण स्वयं है उनका एक विशेष उद्देश्य इस दुनिया में आने का है वो था कि वृंदावन के तीर्थों का प्रकट करना अपने आप से और छठ गोस्वामी के मुख से। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब ये ब्रज परिक्रमा कर रहे थे 2 महीने के लिए, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पहुंचे, वो श्री गिरिराज गोवर्धन में पहुंचे और उन्होंने पूछा अरिटग्राम कहाँ पर है, जो जगह का नाम हुआ ऋषिसुर को मारने के बाद। और जब वो वहाँ पर थे वो लोगों से पूछ रहे थे कि उनको पता है कि राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ पर है, लेकिन किसी को पता नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं एक तमाल वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वो बाहर की तरफ देख रहे हैं और उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा 2 छोटे धान जो खेत के हैं और छोटे छोटे सरोवर दिखाई पड़े। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, राधा भाव ज्योति सुवलित नौमी कृष्ण स्वरूपम, जो परम सत्य है वो एक है, वो एक परम सत्य जो है वो 2 रूप में प्रकट होते हैं प्रेम की लीला के लिए, राधा और कृष्ण की लीला के लिए। और वो दोनों एक हो गए फिर से, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है जो कि कृष्ण है, जो कि इनका जो वर्ण है और भाव जो है राधा रानी का भाव, और वो प्रेम को बांटने के लिए आए और स्वयं आस्वादन करने के लिए आए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए थे और उन्होंने देखा वो दो सरोवर को देखा, वो सबसे पवित्र स्थान थे पूरे ब्रह्मांड में से, राधा कुंड और श्याम कुंड, और सारे जो लोकल ब्रजवासी जो किसान हैं और वो उनको सादर सरोवर समझते थे। आप वो चाहते थे कि पूरे दुनिया को इसकी महिमा पता चले, ब्रजवासी को विश्वास नहीं हो रहा था कि महान सन्यासी जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए, वो सबके परम मित्र जो है बहुत सालों बाद लौट कर आ रहे हैं। जब वो जंगल में आए तो हिरण जो एकदम पास में आए और उसके शरीर को चाट रहे थे और वो उनको सना रहे थे, उनसे बात कर रहे थे और उनको प्रसन्नता प्रदान कर रहे थे, और गाय भी आ रहे थे और मोर नृत्य कर रहे थे उनके लिए और पक्षी उनके लिए गा रहे थे, और ब्रजवासी उसको त्याग नहीं कर सके कि हमारा मित्र हमारा सब कुछ है। और यहाँ पर ये महान संत हैं चैतन्य महाप्रभु स्वामी, जो सुंदरता के मूर्तिमान स्वरूप है, वो राधा कुंड में स्नान कर रहे थे और श्याम कुंड में स्नान कर रहे थे, और फिर मिट्टी ली राधा कुंड और श्याम कुंड के और अपने शरीर 12 जगह पर तिलक लगाया और फिर बाह विबल होकर वो सुंदर प्रार्थना अर्पण कर रहे थे, राधा कुंड की महिमा का गान किया। जैसे राधा रानी सबसे ज्यादा प्रिय है कृष्ण को, उसी तरीके से उनका कुंड भी राधा कुंड सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वो प्रेम वो भरा हुआ है, वो प्रेम रस से भरा हुआ है, और वो ये प्रेम सब काट रही है राधा कुंड में। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भाव विवल होकर वो डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, वो राधा कुंड श्याम कुंड परिक्रमा कर रहे थे और बार बार और हाथ जोड़ करके गा रहे थे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
अभी मैं कुछ रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बोलना चाहूंगा। वो शाश्वत महंत है, सबसे बड़े संत है, राधा कुंड के महान संत है रघुनाथ दास गोस्वामी। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो छोटे से बालक थे, उनके परिवार इतने ज्यादा संपत्तिशील थे और शक्तिशाली थे, उसके बाद भरे भरे जमीन उनके आसपास की जमीन और वो जमींदार और राजा के तौर से वो टैक्स बना रहे थे और वो नियम बना रहे थे, और ये नहीं और जो भी एकत्र किया उसका बहुत अंश उनको मिल जाता, वो करोड़पति थे। और हिरण्य जिनके कोई संतान नहीं थे और उनके भाई गोवर्धन का एक ही बालक था और वो रघुनाथ था, उनके गुरु का नाम था यदुनंदन आचार्य, जो वासुदेव दत्त के परम मित्र थे, दया के स्वरूप मूर्तिमान स्वरूप थे। जो वासुदेव दत्त थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु से एक ही चीज मांगी थी, मैं ये दुख सहन नहीं कर सकता, ये दुनिया के लोग जो आपको भूल जाने के कारण दुखी हो रहे हैं वो मैं सहन नहीं कर सकता, उनका सबका जो कर्म उनके सब जो पूरे जन्म के कर्म सारे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं वो सब मेरे सिर पे आ जाए और मैं हमेशा दुखी रहूं, हमेशा के लिए उनकी ओर की तरफ से मैं दुख भोगूं और वे सब मुक्त जाए और वो आपके साथ आनंद में रह सके। बस यही मेरी एकमात्र इच्छा है, कृपया इस इच्छा को पूरी करिए। रघुनाथ दास वासुदेव दत्त वो इतने गंभीर थे, भगवान खाली हमारी आवाज नहीं सुनते, वो हमारे हृदय में परमात्मा है और हम क्या सोच रहे हैं वो मालूम है। वासुदेव दत्त रियल वास्तव में इस तरह से भाव प्रकट कर रहे थे, वो चाहते तो मांग सकते थे कि मुझे वापस गोलोक वृंदावन जाओ, आध्यात्मिक धाम में चले, और वो तो मांग सकते थे मुक्ति मिल जाए, वो हर एक चीज के लिए अभिलाषा कर सकते थे, लेकिन वो क्या मांग रहे थे कि मैं हमेशा नरक में रहूं जिससे कि सारे ब्रह्मांड में सारे लोगों का उद्धार हो जाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु रोने लगे, उनकी आवाज बिल्कुल गदगद हो गई, कुछ बोल भी नहीं पाए। क्या आप कल्पना कर सकते हो भगवान को सती में डालने के लिए कितना प्रयास होता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आश्चर्य की बात नहीं है, आपने ऐसे कहा, आप प्रहलाद महाराज के अवतार हैं, मैं सब जीवों का उद्धार कर दूंगा सिर्फ आपके कारण, लेकिन आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, मैं आपके दुखों को सहन नहीं कर सकता। वासुदेव दत्त वो यदुनंदन आचार्य के दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु थे, और यदुनंदन आचार्य और बलराम आचार्य परम मित्र थे, और रघुनाथ दास को समय जब छोटे बालक थे उनको वहां से दूर एक चांदापुर ले गए जहां पर उन्होंने विशेष अतिथि को बुलाया था, उन्होंने हरिदास ठाकुर को आमंत्रित किया था जो छोटी सी गुफाओं में रहते थे, वो हमेशा गा रहे थे हरि नाम। हरिदास ठाकुर कम से कम 3,00,000 नाम रोज जप करते थे, जो कि 192 माला है रोज करते थे, और फिर किसी न किसी तरीके से जब वो नाम जप कर रहे होते और लाखों लाखों लोगों को वो बोलते थे कि आप भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ो। जब बालक रघुनाथ ने ये हरिदास की अनासक्ति को देखा, भौतिक स्तर से तो वो बहुत ही अधम परिवार से, अछूत परिवार से थे, उनको बार बार निंदा की जा रही थी, उनको गलत फहमियां हो रही थी, उनको पीटा जा रहा था, लेकिन कोई भी चीज उनको वो दया भाव दिखाने में कभी बदले नहीं, उनके बीच दया दिखाते रहे। इस वैराग्य के इस गुण को देखकर भक्ति और कैसे कृष्ण के प्रति नाम के प्रति आसक्ति, रघुनाथ इतने ज्यादा प्रेरणा प्राप्त किए। उनको वो चाहिए था जो हरिदास ठाकुर को चाहिए, उनको ये सब संसार की संपत्ति और ये जो लाभ है इनके प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं था, उनको वो चाहिए था जो हरिदास ठाकुर के पास, वो है कृष्ण प्रेम। तो अपनी जवानी से उनको उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई, उनके बालक बहुत चिंतित, उनके माता पिता चिंतित थे, और जब वो बचपन थे तब उन्होंने उनके विवाह करा दिया था एक सुंदर स्त्री के साथ, छोटी लड़की के साथ, उनको कोई परवाह नहीं थी उसके बारे में। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब शांतिपुर में थे तो रघुनाथ जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए, और अद्वैत आचार्य रघुनाथ के माता पिता जो वो वैष्णव समाज को जो है पालन करते, वो वास्तव में बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। अद्वैत आचार्य रघुनाथ को लेकर चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, और बालक रघुनाथ उस समय नौजवान थे, वो सब कुछ छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना चाहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अंततः वो पूरी गए और रघुनाथ कोई रुचि नहीं थी, परिवार जीवन में बिल्कुल आ सकते नहीं। वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे और रघुनाथ के माता पिता ने उन्होंने चौकीदारों को रखा था जिसे रघुनाथ को पकड़ा जाए उनको उनको घर में वापस ले जाते। रघुनाथ भागते थे, कितनी बार वो करते रहेंगे। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जब वो वृंदावन जा रहे थे तो फिर से शांतिपुर में आए और रघुनाथ उनसे मिलने के लिए गए और चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा आप एक बंदर की तरह वैरागी मत बनो, घर में जाओ, अपने कर्तव्य को करो और अपने मेरे हृदय में कृष्ण को हमेशा याद करो और कृष्ण की दया से इसी समय सब कुछ पूरा हो जाएगा। रघुनाथ दास को स्वामी कुछ समय के लिए बहाना कर रहे थे कि वो नॉर्मल हो गए, लेकिन कितना समय वो कर सकते थे। और फिर उन्होंने सुना कि नित्यानंद प्रभु पानी हाटी में है और रघुनाथ दास को स्वामी जानते थे कि व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु को सीधे नहीं हम प्राप्त कर सकते, लेकिन हमें आशीर्वाद देना चाहिए। नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु कृपा मिलती है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बलराम है जो कि मूल गुरु है, गुरु की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति होती है। तो रघुनाथ दास को स्वामी उन्होंने प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु को जो कि एक वट वृक्ष नीचे बैठे हुए थे गंगा के किनारे, दूर से ही प्रणाम किया। और एक भक्त ने बताया कि रघुनाथ कहाँ पर, ये देखो रघुनाथ है। नित्यानंद प्रभु ने बोला आप दूर से प्रणाम कर रहे हो, नित्यानंद प्रभु बोले तुम, और नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ लिए और उनके सिर के ऊपर अपने चरण कमल रखे और आपको चोर आपको सजा दी जाएगी। और उसकी सजा क्या है कि सारे भक्तों को सबको प्रसाद खिलाओ और शीरा दही खिलाओ सबको, जिसमें कि पोहा और दही होता है। रघुनाथ बहुत प्रसन्न हुए, सारे जो भी पैसा था उसमें से दही दूध और शीरा सब खरीदी करने लगे और बड़ी बड़ी ऊंची मात्रा में लिया और फिर बड़े बड़े बर्तनों में रखा गया। और फिर उसके बाद में जो है दूसरे भाग में उन्होंने घी डाले और कपूर डाला और शक्कर और विशेष केले और दूसरा बचा हुआ आधा जो है और सबको बुलाने लगे। वो सबको दो बर्तन दिएगा और जो है छिला दही और साथ में दूध और सब जगह से भक्त आ रहे। और फिर सब लोग आने लगे, नागरिक लोग आने लगे, गंगा का किनारा लोगों से इतना भर गए उनके उत्सव के लिए, इतने सारे लोग हैं कि जगह ही नहीं बची थी। आप लोग अनुभव होगा जब जगह नहीं रहती, इसके बारे में सुनो। इतने वो उत्साहित है प्रसाद के लिए, इतने सारे लोग थे जो नदी के किनारे में, कुछ थे जो नदी के अंदर खड़े हुए थे और पानी हट्टी में बहुत तेजी से दौड़ते और दोनों के हाथ में दो मटके थे जो जिसमें छिड़ा दही और छिड़ा दूध थे। नित्यानंद प्रभु इतने खुश हुए, उन्होंने प्रार्थना को चैतन्य महाप्रभु से बुलाया उत्सव का आदमी, और चैतन्य महाप्रभु जो पुरी में थे वो अप्रकट रूप से प्रकट हुए, आध्यात्मिक रूप से सिर्फ चैतन्य नित्यानंद प्रभु और कुछ भक्त देख सके। और वो छिड़ा दही खा रहे थे और हर एक भक्त का जो है छिड़ा दही ले रहे थे और मुँह में डाल रहे थे और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इतने प्रसन्न हुए। और इस उत्सव के बाद नित्यानंद प्रभु ने और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य प्लेट और ये महाप्रसाद के रूप रघुनाथ दास स्वामी को और उस रात राघव पंडित के घर में बड़ा उत्सव हुआ, बड़े कीर्तन, जहाँ पर सब लोग जोर से पुकार रहे थे हरि नाम,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
ये इतने भाव से भरे हुए थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हो गए भक्तों को और अगले दिन नित्यानंद प्रभु आए और बड़ी नम्रता के साथ और राघव पंडित को राघव पंडित लेकर आए नित्यानंद। रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक प्रार्थना अर्पण की, वो भौतिक बंधनों से मुक्त होना चाहते थे जिससे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा पूर्ण रूप से लग सके सन्यास आश्रम में, और वो समझ गए वो दुनिया को प्रकट करना चाहते थे, ये संभव नहीं है नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना, संभव नहीं है जो कि मूल गुरु है। नित्यानंद प्रभु ने सब भक्तों से कहा कि आप रघुनाथ को आशीर्वाद दें और बोले इस व्यक्ति के चरित्र को देखो, इसके पास इंद्र के समान उसके पास संपत्ति शक्ति है, हर एक सुविधा जो भोग करने के लिए, और वो इसकी परवाह नहीं करते, वो सिर्फ भगवान की प्रेम में सेवा करना चाहते, इसको आशीर्वाद दे। सारे भक्तों ने आशीर्वाद दिया रघुनाथ, रघुनाथ ने सच्ची नम्रता के साथ सबके चरणों की धूल ली और श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा क्योंकि आपको कृपा मिली, इन भक्तों का आशीर्वाद मिला है और क्योंकि आपने मेरे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए थे आपकी सेवा भावना से कि स्वयं प्रकट हुए, बहुत जल्दी बहुत ही जल्दी और आप मुक्त हो जाओगे, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और आप चैतन्य महाप्रभु के साथ रहोगे, उनके स्वरूप दामोदर के आप असिस्टेंट रहोगे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने कृतज्ञ, उन्होंने भक्तों को डोनेशन दिया छिपकर और वो घर में गए और एक बड़े जादू के तरीके योगिक शक्ति से वो भाग गए। आपको डिटेल चाहिए चैतन्य चरितामृत पढ़ना आप, अगर और डिटेल चाहिए वो कैसे भाग रात्रि के बीच में, और वहाँ पर 12 गार्ड थे, 24 घंटे वहाँ पर रहते थे, उनको बांध के रखते थे, उनके माता पिता से कहने रस्सी से बांध देना चाहिए उसको, पिताजी बोले कि जिसको उसको इतनी संपत्ति है और उनका सुंदर पत्नी है और उसके पास सब कुछ इतना है, अगर ये चीज इसको नहीं बांध सकते, ये सब चीजें सबको बांध है, जन्म 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 भाग बांट रहे हैं, तो रस्सी क्या बांधेगी, हमारा बेटा जो दिव्य पागल बन गए, उसको भक्ति मिल गई, चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति मिल गई, हम क्या कर सकते हैं। और रात्रि के बीच में वो बड़े होशियारी के साथ गुरु का आशीर्वाद लेकर वो भाग गए और वो जंगल की तरफ से निकले, 12 दिन उनको लगे चलने में जंगल के रास्ते हैं, जिनको उधर मेन रोड से अगर जा रहे होंगे तो पकड़े जाएंगे। उन दिनों में उसको थोड़ा दूध, बस 3 दिन 12 में से 3 दिन में थोड़ा ही मिला और पुरी में जब पहुंचे बहुत ही उनके स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, लेकिन वो बहुत खुश थे। उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास लेकर आए। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले, कृष्ण की दया से ही कि व्यक्ति जो है ये सब भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है, जैसे आप मुक्त हो गए हैं। और रघुनाथ ने आज बताया, मुझे कृष्ण नहीं पता, बस आपकी कृपा है, आपकी कृपा ने मुझे बचा दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को सर्व दामोदर के अधीन रखा। हम उसके बारे में बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, जो कृष्ण राधा रानी के भाव को स्वीकार के, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो कृष्ण सखी हैं, कृष्ण लीला में ललिता सखी हैं, जो राधा रानी के मुख्य असिस्टेंट हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत ही सुंदर भाव में थे राधा रानी के दासियों के दासी के रूप में। और कई वर्षों तक उन्होंने सेवा जगन्नाथपुरी में सेवा की। उनके पिताजी जब पैसे भेज रहे थे और रघुनाथ जो है चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाते उस पैसे से, और कुछ दिनों के बाद उन पैसे लेना बंद कर दिया और वो जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास भिक्षा मांग रहे थे। और फिर वो सोच रहे थे कि ये भी इंद्रतृप्ति है, क्योंकि मैं भिक्षा मांगता हूँ दरवाजे के सामने कि कुछ लोग आते हैं तो हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति कुछ दे रहा है, कुछ व्यक्ति नहीं दे रहा, अगर कोई देता है तो आशा बन जाती है फिर से कुछ। तो वो वहाँ पर जहाँ पर मुफ्त में प्रसाद बैठता था, प्रसाद मुफ्त मिलता है, वहाँ पर चले गए। और कुछ समय बाद वो भी उन्होंने करना बंद कर दिया। और उस दिन उन्होंने बताया कि वो स्थान में आते थे जहाँ पर चावल जो खराब हो गया है, जो कि दुकानदार बेच नहीं सकते थे, वो जगन्नाथ का प्रसाद जो गायों को दिया जाता था, जब गाय भी चावल को नहीं खा सकते थे, वो चावल को फेंक देता था। और रघुनाथ रात्रि के समय भी जाते थे, किसी को बताए बिना उस चावल को लेते थे और उसका अंदर का भाग लेते थे, बस वही खाते थे। लेकिन वो हमेशा भावमग्न थे, सेवा भावना में लगे हुए थे, प्रेममय सेवा में, कृष्ण के नाम को पुकारना, कृष्ण के बारे में श्रवण करना और कृष्ण को याद करते हुए। और चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए थे उनसे, उन्होंने अपने स्वयं की गोवर्धन शिला उन्होंने दी और गुंजमाला भी प्रदान कर दी। 3 साल के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसकी पूजा की। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने ज्यादा विरह से इतने दुखी हो गए जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए इस धरती से, और कुछ दिनों बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी तय नहीं कर सके और वो भी आध्यात्मिक धाम में चले गए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने निश्चय किया कि मैं वृंदावन जाऊंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे अपनी गोवर्धन शिला दी, कि इसका मतलब मेरे को गोवर्धन के पास निवास स्थान दिए, और मुझे गुंजमाला दी की इसका मतलब श्रीमती राधा रानी का आश्रय दी। वो सोचे थे मैं जीवित नहीं रह सकता अपने स्वामियों के बिना, मैं गोवर्धन रथ ऊपर चढ़ाऊंगा और आत्महत्या कर लूंगा और पवित्र स्थान में अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। वो वृंदावन से आए, वृंदावन तक आए, और वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए गए और उनकी अनुमति लेने के लिए, जिससे आत्महत्या कर सके। उन्होंने अनुमति नहीं दी, वो बोले हम 3 भाई हैं, हमें साथ में रहना चाहिए, भाइयों के रूप में एकत्रित रहना चाहिए, आप हमारे साथ में रहो। पूरे ब्रजभूमि में चैतन्य महाप्रभु की लीला किसी को नहीं मालूम है जितना आपको मालूम है। आप तो व्यक्तिगत रूप से लीलाओं को देख रहे थे और आपने व्यक्तिगत रूप से स्वरूप दामोदर के पास में आपके आपने डायरी देखी। आप हमारे साथ रहो और जो सब आपके पास लीलाएं हैं वो सब हमारे साथ भी चर्चा करो। और ये जानते हुए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ को ये शिला दी और ऊपर सनातन ने उनको रहने का स्थान राधा कुंड के पास निवास स्थान करने का अवसर दिया गोवर्धन पर्वत के पास में राधा कुंड में। हमारे गौड़ीय इतिहास के अनुसार भक्ति रत्नाकर में बताया गया है कि रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर इतने गहराई में मग्न रहते भजन में, जैसे वो नाम लेते थे, कृष्ण के पवित्र नाम पुकारते थे, कृष्ण का रूप, उनके गुण, उनका प्रेम, उनकी लीलाएं, उनका धाम, सब कुछ उनके सामने प्रकट हो रहा था। वो इस दुनिया के थे ही नहीं, और एक दिन सनातन गोस्वामी आए, रघुनाथ दास गोस्वामी जप कर रहे थे राधा कुंड के तट पर, इतने मग्न थे स्मरण में, इतने मन मग्न हो गए थे राधा कुंड के तट के ऊपर, और दो शेर थे जो रघुनाथ से बस 2 फीट दूर थे, वो पानी पी रहे थे, बस 2 फीट दूर थे रघुनाथ से। सनातन गोस्वामी ने देखा कृष्ण स्वयं प्रकट हुए हाथ में एक छड़ी लेकर, और रघुनाथ के और शेरों के बीच में थे उनकी रक्षा करने के लिए। रघुनाथ ने कुछ देखा ही नहीं, वो हरि नाम में मग्न थे। और फिर जब शेर चले गए तो कृष्ण मुस्कुराए और कृष्ण अप्रकट हो गए, और सनातन गोस्वामी ये देख रहे थे कृष्ण व्यक्तिगत रूप आ रहे हैं आपकी सेवा करने के लिए। जब हम नाम ले रहे हैं कृष्ण का, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा रानी है कृष्ण कि मेरे को अपनी सेवा में लगाओ, और जब आप पुकारते हो कृष्ण की सेवा में लगे हो तो भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं आपकी रक्षा करने के लिए। रघुनाथ को बहुत दुखी महसूस हो रहा था। अगले दिन एक गर्मी का सीजन था और रघुनाथ इतने मग्न थे कृष्ण के लीलाओं में, इतने नाम में इतने मग्न हो चुके थे कि दोपहर का सूर्य था वो अग्नि की तरह धधक रहा था, और रघुनाथ दास गोस्वामी का चमड़ी जल जाती, और सनातन गोस्वामी ने देखा और उन्होंने देखा श्रीमती राधा रानी अपने वहां पर रघुनाथ के पीछे खड़े हुए हैं, और उनके साड़ी का एक भाग उनके सिर के ऊपर रख रहे हैं जिससे उनको धूप नहीं लगे, और जैसे वो कर रहे थे और वो स्वयं गर्मी में कष्ट कर रहे थे, उनको बहुत सारा राधा रानी को पसीना आ रहा था, और रघुनाथ दास गोस्वामी इतने मग्न थे अपने समाधि में, प्रेम समाधि में इतने मग्न थे उनको पता ही नहीं था। श्री राधा रानी मुस्कुरा रही और फिर वहां पर से अप्रकट हो गई। सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि आपको एक आपके लिए एक भजन कुटी हम बनाना चाहते हैं जिससे कि आप हमेशा भगवान की राधा और कृष्ण की सेवा में लगे, और आपको यहाँ पर राधा कृष्ण में यहाँ पर आकर आपकी सेवा नहीं करने पड़े। ये शुद्ध प्रेम का स्तर है, प्रेम भक्ति। ये श्रीमद् भागवतम की विशेषता है। पूरे दुनिया में लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान को अपना आज्ञाकारी सेवक मानते हैं, मुझे ये दो, मुझे वो ले आओ, ये ले आओ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। और अगर भगवान हमें नहीं देते जो चीज हमें चाहिए, कभी कभी हम श्रद्धा खो बैठते हैं, कभी हम क्रोधित हो जाते हैं, और हम और प्रयास करते हैं कि भगवान मुझे और दे दें, जो बहुत गहरी तपस्या। लेकिन श्रीमद् भागवत में बताया गया अहेतुकी अप्रतिहता, वो प्रेम जो हृदय को संतुष्ट करने वाला है वो बिना किसी शर्त के हैं, उसमें कोई हेतु भी नहीं है, उसमें कोई स्वार्थ की भावना भी नहीं है। रूप गोस्वामी बताते हैं शुरुआत में भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, सच्ची भक्ति जो है वो उसमें कोई भौतिक और आध्यात्मिक कोई इंद्र तृप्ति नहीं, जिसमें धन संपत्ति है और कोई इच्छा नहीं कि योगिक शक्तियां मिले, भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता। सच्चे भक्ति का मतलब है उसमें एक ही भाव है, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करना किसी भी स्थिति में। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत दुखी थे कि राधा और कृष्ण व्यक्तिगत रूप से आ रहे थे, अलग अलग रूपों में आके मेरी सेवा कर रहे थे, वो उनको ये सब नहीं करना चाहते, वो उनकी सेवा करना चाहते थे राधा कृष्ण की। तो भजन कुटीर में रह रहे थे और एक बार वो सोच रहे थे कि ब्रजवासी यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड में आते हैं। उस जमाने में दोनों कुंड छोटा खेत में था, सरोवर था, जिसका इसका राधा कुंड श्याम कुंड का जो साइज था वो 12 फीट बाय 12 फीट था, और जो 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 वो रास्ता जो है बहुत मिट्टी से कीचड़ से भरा हुआ था। रघुनाथ दास गोस्वामी वो सबसे बड़े पवित्र तीर्थों को देख रहे थे, लेकिन जिसे दुनिया लोग ज्यादा समझ सके वो मन में सोच रहे थे मेरे को एक बड़ा बनाना चाहिए, उसमें सीढ़ियां और घाट बनाना चाहिए जो लोग अच्छी तरीके से राधा कुंड में स्नान कर सके। लेकिन जब वो सोच रहे थे ऐसे, रघुनाथ दास गोस्वामी वो बोले कि मैं पैसे के बारे में सोच रहा हूँ, मैंने पैसे तब त्याग कर दिए, अपने विचार अपने हृदय से निकाल दिया, वो फिर भजन में मग्न हो गए, साधना में लीन हो गए, लेकिन भगवान उनके हृदय में उनकी इच्छा को सुन लिया। और वास्तव में एक महान भक्त की भावना जो है वो कृष्ण की इच्छा होती है। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था जो बद्री का आश्रम तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, और उनका विचार था कि वो बहुत बड़ा डोनेशन जो है वो बद्री विशाल को देना चाहते थे। श्रीधर जी बद्रीनाथ गए थे, अगले दिन वो बड़ा डोनेशन देने जा रहे थे जिससे कि बद्रीनाथ में कोई कंस्ट्रक्शन के लिए। और उसी रात्रि को बद्री विशाल बद्रीनाथ के मूर्ति वो स्वप्न में आए और बोला कि मैं चाहता हूँ कि जो सारा पैसा है रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दो, आप वृंदावन में जाओ गोवर्धन के पास में, और वहाँ पर अरिष्टासुर गांव है और वहाँ पर दो खेत हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप रघुनाथ दास की मदद करो उसका जीर्णोद्धार करने में। तो वो इतनी दूर से बद्रीनाथ से आए, राधा कुंड में पहुंचे और देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी वो छोटी सी कुटिया में बैठे जब भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत बड़े सौभाग्य संपत्ति दी। रघुनाथ बोले कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, बस नाम लेना है। फिर वो मन में सोच रहे थे लेकिन भगवान की सेवा में सब कुछ उपयोग कर सकता हूँ। तो जीव गोस्वामी जो वृंदावन में वो आए और रघुनाथ दास गोस्वामी ने उन्होंने वो कुटिया का निर्माण किया। रघुनाथ दास गोस्वामी इस विचार का आदान प्रदान कर रहे थे और कंस्ट्रक्शन की टीम थी जिसे नाम था ब्रिजवासी कंस्ट्रक्शन कंपनी, और सब विचार राधा कुंड को बड़ा बनाया और बहुत सुंदर सीढ़ियां बनाई नीचे जाने के लिए, और वो थे उसी प्रकार से श्याम कुंड भी बनाने वाले थे, लेकिन एक रात्रि को रघुनाथ दास उसे विश्राम कर रहे थे। और हम विश्राम की बात करते हैं, चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी वो कम से कम रोज 100,000 नाम लेते, यानी 64 माला रोज करते, कभी कभी 200,000 भी जप करते थे, कभी कभी उससे भी ज्यादा करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा दंडवत प्रणाम करते थे, 1,000 बार वैष्णव को प्रणाम करते थे, राधा कृष्ण को 1,000 बार प्रणाम करते, और वो दंडवत प्रणाम करते थे 2,000 बार प्रणाम करते वैष्णव को। वो बहुत कम खाते थे। रूप और सनातन जब धरती छोड़कर चले गए, वो बिल्कुल कुछ वो कुछ कुछ ताक के 2-3 बूंद पी रहे थे बस, हर रोज बस एक द्रोण में भर। वो श्रवण कीर्तन में इतने मग्न थे, ध्यान लगाने में इतने मग्न थे, बहुत सुंदर कविता लिख रहे थे कविताएं। और उस बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा खाना और सोना मिला के, सब मिला के शरीर संबंधी चीजों को वो 90 मिनट से भी कम में सब कर लेते थे, 1.5 घंटे से भी कम, कभी कभी इतने मग्न हो जाते थे, इतने भक्ति में लगे रहते हैं कि वो भूल जाते हैं, वो 90 मिनट भी नहीं त्याग कर सकते थे। और कुछ क्षणों के लिए जब वो विश्राम कर रहे थे, उनको एक दृष्टि स्वप्न दिखाई पड़ा, और उस दृष्टि में उन्होंने क्या देखा, महाराज युधिष्ठिर प्रकट हुए, और रात में अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, 5 पांडव प्रकट हुए, और उन्होंने बताया रघुनाथ दास को कि हमने पेड़ों का रूप धारण किया श्यामक कुंड पर, राधा और कृष्ण की नित्य लीला में ध्यान लगाने के लिए, कृपया हमें मत काटो। अगले दिन वो पेड़ों को काटने वाले थे और वो कुंड को चौरस बनाने वाले थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि नहीं, पेड़ को मत काटो, ये महान संत हैं और ये पांडव हैं, और यही कारण है कि श्याम कुंड जो उसका आकार थोड़ा अलग है, जहां पर तमाल पेड़ था, जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने बैठकर राधा कुंड और श्याम कुंड खोज के निकाला था, वो भी आज भी मौजूद है। बहुत सारे पवित्र स्थान है राधा कुंड के आसपास, बहुत सारे पवित्र स्थान है। कुंडेश्वर महादेव का एक विग्रह जो राधा कुंड धाम के रक्षक हैं, शिव जी का शिवलिंग है, जो भी वहां पर रहे हैं, बहुत बहुत सालों से वहीं पर। चारों दिशा में शिव जी हैं राधा कुंड धाम की रक्षा करने के लिए। और वहां पर समाधि मंदिर है, रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि वहां पर है, उसी स्थान जहां पर वो भजन करते थे वहीं पर उनकी समाधि भी है। ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताया गया, उसके भजन का स्वभाव कैसा था। कभी कभी वो इतने ज्यादा मग्न थे श्रवण और कीर्तन करने में कि इतने गहराई में मग्न थे ध्यान में, कृष्ण के ऊपर ध्यान कर रहे थे कि कृष्ण उनको कृष्ण की लीलाओं में थे, और वो दूसरे गोपियों को मदद कर रहे थे, तो वो कुछ परमान खीर बना रहे थे, राधा और कृष्ण के लिए खीर बना रहे। राधा गोपीनाथ ने खीर लिया और फिर वो खीर सखियों और मंजरियों को प्रसाद बांटा, और गोपियों ने वो खीर रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत ज्यादा खीर दी। ये सब ध्यान में हो रहा था, जैसे कि मानो स्वप्न हो, और उन्होंने खाया, बहुत ज्यादा खा लिया। रघुनाथ दास गोस्वामी रूप सनातन की आज्ञा से हर रोज करीब 3 घंटे के लिए राधा कुंड के तट के ऊपर वो चैतन्य वो चैतन्य महाप्रभु की लीला वहाँ पर सुनाते थे, जैसे उन्होंने देखी थी, जैसे उन्होंने महान भक्तों के मुख से सुनी थी वैसे दोहरा देते। एक दिन जब उनको आने का समय आया वो आ नहीं सके। भक्तों ने पूछा क्या हुआ और उन्होंने देखा कि वो बहुत बीमार लग रहे हैं, तो उन्होंने एक सिनाजी मंदिर में उन्होंने बात की। वल्लभाचार्य के महान पुत्र विट्ठलनाथ वहाँ पर निवास करते हैं, जो वहाँ के आचार्य, जो पुष्टि मार्ग, जो श्रीनाथ जी की पूजा कर रहे थे मंदिर के ऊपर, और उस जमाने में ये वैष्णव आपस में उनकी बहुत प्रेम की मित्रता थी। जब विट्ठलनाथ को पता चला कि रघुनाथ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं, उन्होंने बहुत दो अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टरों को बुलाया और वहाँ पर गए और वह रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन कुटीर में गए और उनका पल्स देखने लगे और उनका देखा और वो लौट कर आए और भक्तों को बताया वो बीमार हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खीर खा ली है, बहुत ज़्यादा खा ली। भक्त उनके डॉक्टरों की तरफ देखने लगे और वो विट्ठलनाथ उनके डॉक्टरों की तरफ देख रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी को सब लोग जानते थे, तो दो दिन में दो तीन बूंद से छाछ लेते थे। वो उनका नियम, रघुनाथ दास गोस्वामी के नियम सिद्धांत ऐसे थे, इतने ज्यादा गंभीरता से करते थे, वैसे थे कि जैसे कि पत्थर के ऊपर रेखा के समान गहराई से करते, जैसे पत्थर के ऊपर रस्सियों को मिटा नहीं सकते। कोई भी स्थिति जो है रघुनाथ दास को इस सिद्धांत से अलग नहीं रह सकती थी। वो इतने ज्यादा ईमानदारी थे, नैतिकता थी, इतने मग्न थे, वो परम दिशा निवर्तित थे और उनको इतना सुंदर अच्छा ऊंचा टेस्ट था, भगवान की कथा श्रवण और कीर्तन करने में इतनी रुचि थी और सेवा करने के लिए इतनी उत्सुकता थी। कोई उनको दो बूंद से ज्यादा पीने को फोर्स नहीं कर रहा था और डॉक्टर ने बोल रहे कि उनको अपच हो गए। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा खाने से हो गया, उनको विश्वास नहीं होता शिष्यों को। फिर वो रघुनाथ दास को समाचार मिला और उन्होंने भक्तों को बताया कि वास्तव में जो बोल रहे हो सही है। मैं नाम के जब के समय मेरे को एक सपना दिखाई पड़ा कि गोपियां मुझे खीर खिला रहे थे और मुझे और ज्यादा खिला रहे थे और अब मेरे को अपच हो गए और सबने विश्वास किया उनको विश्वास, ये प्रेम भक्ति का स्वभाव जो रघुनाथ दास को समय प्रकट हो रहा है, जो उसके हृदय में जो लीला थी वो परम सत्य बन जाते। राधा कुंड के तट के ऊपर वहां पर एक जानवा बैठक है। गौर पूर्णिमा के जो पहला उत्सव जो खेतुरी में मनाया गया, जो नरोत्तम ठाकुर के द्वारा, श्रीनिवास आचार्य के द्वारा जो किया गया, जानवा देवी जो सबसे सीनियर है, वो वृंदावन में आए। रूप और सनातन जो है वो निकल चुके थे, वो अलग 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 बना रहे थे, सारे भक्तों के लिए बना रहे थे। और उनके प्रेम माता में सबको सबको सबसे बड़ा आनंद प्रदान कर रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य
महाप्रभु
चले गए। वो इस दुनिया में थे क्योंकि रूप और सनातन उनके साथ में रहना चाहते, और अब वो भी चले गए और अभी वो हाश भी नहीं पी रहे थे। वो इतने विरह में थे, न केवल राधा कृष्ण से बल्कि उनके भक्तों से। भगवान चैतन्य महाप्रभु आनंद राय थे। सबसे बड़ा दुख क्या है? रामानंद राय ने जवाब दिया कि आपके भक्तों के संग के विरह में रहना ये सबसे बड़ा दुख है, इससे बढ़कर कोई दुख नहीं। गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी भजन कुटीर भी कुछ समय तक राधा कुंड के तट पर थी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी उन्होंने जाना देवी को बताया वृंदावन में कि रघुनाथ गोस्वामी की स्थिति क्या है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए तुरंत निकलते हैं। वो बहुलावन आ गए, सुंदर वन था, और फिर राधा कुंड के तरफ आ गए। कृष्णदास गोस्वामी और बाकी के लोग इन्होंने उनको रघुनाथ दास को सूचना दी कि जानवा देवी उनका आगमन हो रहा है। जैसे उन्होंने उनका नाम सुना और उन्होंने देखा, वो देख अपने प्रेमाश्रु उनके आंखों सारे विरह से उन्होंने देखा कि भगवान के ऊपर भक्तों को बहुत आनंद प्रदान किया, हर एक को प्रेरित किया भगवान के हरिनाम की शरण लेने के लिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनकी भजन कुटीर भी राधा कुंड के तट पर थी। हम श्री चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हैं, बहुत बूढ़े थे, मणिकेतन रामदास नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, वो उनके घर पर मिलने के लिए आए थे बंगाल में, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई उन्होंने उनका अनादर किया इस महान जीवात्मा के प्रति, आत्मा के प्रति। और कृष्णदास गोस्वामी बहुत ही उन्होंने बचाव किया नित्यानंद महाप्रभु की महानता का और उनके गुण का। उस समय नित्यानंद प्रभु उनके सपने में सुंदर स्वरूप में, वो एक ग्वाल बाल के रूप में थे, हाथ में काठी थी, उनको कृष्णदास वो कृष्ण कृष्ण कहकर पुकार रहे थे, और फिर कविराज गोस्वामी की तरफ देखकर उन्होंने दिशा निर्देश किया वृंदावन की तरफ, और उन्होंने कहा कि वृंदावन चले जाओ और आपके सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। बहुत ही वो बूढ़े थे, फिर भी तुरंत उठने के बाद कोई भी शब्द किसी को न बोलते हुए उन्होंने घर छोड़ा और वृंदावन की तरफ चल पड़े, और कभी वापस नहीं आए। हर दिन राधा कुंड के तट पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा बोला गया लीला और शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और कविराज गोस्वामी अपने डायरी में लिखते थे और अपने जीवन में उसको अपनाते थे, हर कुछ जो कुछ उन्होंने सुना है और देखा है। कभी कभी बाद में भक्त वृंदावन के जो है उन्होंने विनती की कृष्णदास गोस्वामी को एक पुस्तक लिखने के लिए, श्री चैतन्य चरितामृत। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर भक्त के पास गए
उनके आशीर्वाद की याचना करने के लिए, और फिर हर विग्रह के सामने गए, उनके भी आशीर्वाद की याचना की। और जब सब मदन मोहन के जब उन्होंने आशीर्वाद मांगे, गोविंद जी एक विग्रह का हार नीचे गिरा और फिर उसको कृष्णदास को समर्पण किया, और सबको समझ गया कि भगवान की इच्छा क्या है, और उन्होंने हाथ ऊपर कर हरि बोल कहा। तो राधा कुंड के तट पर श्री चैतन्य चेतामृत की रचना की गई। उसके नजदीक विश्वनाथ चक्र ठाकुर की भी भजन कुटीर है, युगोस्वामी की भजन कुटीर, गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर, सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर, वल्लभाचार्य की बैठक भी है, माधवेंद्रपुरी की बैठक भी है, और मुख्य विग्रह वृंदावन के गौड़ी वैष्णव के जो है, उस समय जब औरंगजेब ने मंदिरों का विध्वंस कर रहे थे वृंदावन में, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ और बहुत सारे विग्रहों को गुप्त रूप से राधा कुंड में लाया गया, और वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर थे, वहाँ पे अनेक सालों तक वो छुपे हुए थे राधा कुंड में। उसके बाद उनको जयपुर लेके गया, जहाँ पर महान राजन उनकी रक्षा की, और राजस्थान में वो जगह है जयपुर। एक बार हमारे परम पूज्य गुरु महाराज प्रभुपाद राधा कुंड के तट पर आए उनके गुरु को मिलने के लिए, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। राधा कुंड और श्याम कुंड के तट पर राधा कुंज बेरे मंदिर है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा स्थापित है, और वहाँ पे उनके गुरु कुशकुर कुशल बापस जी की पुष्प समाधि भी उधर ही है, और भक्तिसंत ठाकुर प्रभुपाद इनके पिताजी भक्तिनाथ ठाकुर उनका घर था, भजन कुटीर भी था राधा कुंड के तट पर, और उनकी पुष्प समाधि भी और भक्तिसंत ठाकुर की भी पुष्प समाधि दोनों राधा कुंड पर है। आप उनका बिछाना भी देख सकते जहाँ पर वो सोते थे, उनके चप्पल है, उनकी काठियाँ अभी तक आज भी है। एक बार श्रील प्रभुपाद उनको भेंट दे रहे थे, उस समय वो राधा कुंड के तट पर चलते रहे थे श्याम कुंड के तट पर, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने स्पष्ट करा तो उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरह से मठ में आग लगी है। उन्होंने उनका कितना सारा जीवन दिया था, उपलब्धियाँ दी, तैयार की थी भक्तों के लिए, जिस तरह से वो एक साथ शांत रूप से रह सकते और भक्ति का पालन कर सकते, भक्ति में सेवा कर सकते, और उस मूलभूत आधार पर उन्होंने वो अधिकाधिक भारत भर और संपूर्ण जगत में लोगों को प्रेरित कर सकते, शुद्ध भक्ति का आस्वादन कर सकते। उन्होंने कहा लेकिन हमारे पास इतना अच्छा भी उपलब्धियाँ है, इतने जब जो नेता भक्त है वो अब कुछ स्थिति के लिए झगड़ा कर रहे हैं, वो उपलब्धियों के ऊपर झगड़े कर रहे हैं, वो एक आग की तरह है। अगर हम उस मंदिर का संगमरमर ले लेंगे, उसको बेचेंगे और वो पुस्तक कृष्ण भावना के ग्रंथों का वितरण कर सके उसके द्वारा, स्थान पर उन्होंने प्रपत्र का कहा कि अगर आपको कभी पैसा मिले तो आप पुस्तक का प्रकाशन कीजिए। प्रपत्र उस समय ग्रस्त थे और उनके साथ एक बेटा था मथुरा मोहन, जब प्रपत्र के हाथ पकड़ रहे थे और चल रहे थे भक्ति संतोष ठाकुर के साथ मुझे याद है, प्रभुपाद ने उसको अपने हृदय में ग्रहण कर लिया। और हमें समझना चाहिए अगर कोई भी चीज अगर हमें विचलित गुरु को विचलित करती है, जब भक्त एक साथ एक दूसरे के साथ झगड़े कर रहे हैं, ये सबसे अधिक विचलित करता है। भक्ति सांस ठाकुर बताते हैं ये आग की तरह है, वो सब कुछ नष्ट कर सकती है। श्रील प्रभुपाद बताते कोई भी चीज माया के पास शक्ति ने हमारी भक्ति के प्रगति को रोकने के लिए बाहरी रूप से, परंतु वो हमारी भक्ति को प्रगति को रोक सकते हैं आंतरिक रूप से, ईर्ष्या को उत्पन्न करकर अहंकार स्पर्धात्मक जीवन को तैयार करकर, एक दूसरे को आदर देने के बजाय हमें डर लगने लगता है एक दूसरे से, उनके यश से हमें डर लगने लगता है। ये आग की तरह, बहुत ही बड़ी आग की तरह। भक्ति सांसद ठाकुर प्रभुपाद को कहते और प्रभुपाद ने हमें बताया उनके आखिरी जो आदेश था वो था कि आपका प्रेम मेरे ऊपर देख सकते हैं, आप कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं उसके द्वारा। जब आध्यात्मिक गुरु देखते हैं कि भक्त एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा एक दूसरे को आदर दे रहे हैं प्रेम के द्वारा, हर एक दूसरे को उत्साह प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे को शक्ति प्रदान कर रहे हैं अगर कोई कमजोर है तो, भक्तों का संग इतना शक्तिशाली है सत्संग। सत्संग के बिना अगर हम बहुत ही महान मुक्तात्मा होंगे, अगर नहीं होंगे तो उसके ना आध्यात्मिक जीवन में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है सत्संग के बिना। और हम देखते हैं बड़े से बड़े लोगों में हरिदास ठाकुर कैसे संत थे, वो उन्होंने माया को भी दीक्षा दिया था, हरिनाम दीक्षा दिया था जब उन्होंने माया ने शरणागति ली थी, लेकिन वो हमेशा भक्तों का आदराचार्य का संग लेते थे। जब वो पुरी में रहते थे तो सनातन गोस्वामी निरूप गोस्वामी की संग प्राप्त करते थे, और सब भक्तों का जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, संग जो है वो बहुत ही आस्वादनीय और महात्मी उनके आध्यात्मिक जीवन में जिंदा रहने का एक साधन समझते हैं। और जब हम पढ़ते हैं भक्तों के बीच के सुंदर संबंध को शास्त्रों में, जब पढ़ते हैं हम तो वो प्रकट करता है हमें कि वैष्णव संस्कृति क्या है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं वैष्णव मतलब कोई ईर्ष्या रहित रहना। श्रील प्रभुपाद लिखते तीसरे स्कंध में श्रीमद् भागवत के कपिल देव को उद्धृत करते हुए बोलते हैं, जब बताया जाके कि भक्ति में सेवा तमोगुण में, रजोगुण में और सत्वगुण में, और भक्ति में सेवा ये दिव्य है उनके भी परे तीनों गुणों से। और बताते कि भक्ति जो तमोगुण में रहते हैं वो भक्ति करता है तमोगुण में, लेकिन वो व्यक्ति की गुण जो है वो ईर्ष्यालु है, गर्विष्ठ है, देखता कि सोचता कि मुझे बाकी लोगों से ज्यादा मालूम है, लोगों का अनादर करता है या कठोर रहता है, कभी कभी हिंसात्मक कार्य भी करता है, दूसरों की निंदा करता है, या अलगाव भाव रहता है, मतलब कृष्ण से भी अलग इच्छा पर लगता है, वो भक्ति है
तमोगुण वाली प्रपद तात्पर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती को बताते हुए कहते हैं, वैष्णव ये ऐसा व्यक्ति जो स्वीकार करता कि जीवन का परम ध्येय भगवान विष्णु की सेवा, परंतु ऐसा वैष्णव अगर ईर्ष्यालु है, कठोर है, निंदा करता है, गर्विष्ठ है, अलगाववादी है, हम उसको नमस्कार दूर से करते हैं। हम बहुत ही सावधान रहते हैं उसके साथ नजदीक का संबंध नहीं रखते, क्योंकि वह हमें हमारे भक्तिमय स्तर से नीचे ला सकता है। इसलिए प्रभुपाद हमें कहते हैं कि आचार्य कपिल देव और हमें बताते हैं कि ये सिर्फ ऐसे नहीं, भक्त इसलिए उसका संग अच्छा होता है, ऐसा ही नहीं। उसके चरित्र और गुण क्या है व्यक्ति के, भक्त के, वो सत्संग कहलाता है, नहीं तो वो कुसंग भी हो सकता है। भक्ति में सेवा रजोगुण में जो है, वो जब वो भक्त सेवा धन काम प्रतिष्ठा लोभ के द्वारा की गई भक्ति, जो कर्मकांडी भक्ति कही जाती है, ऐसा भक्त अनेक जीवन व्यतीत करना पड़ेगा उसको, उसका हृदय को शुद्ध करने के लिए। और सत्वगुण की भक्ति मतलब वहां पे प्रणयता है, नैतिकता है, और कोई भी इच्छा हमारे लिए खुद के लिए न करते हुए जो सेवा की जाती है वो सत्वगुणी भक्ति कहलाती है। और जो हम सेवा भगवान की सिर्फ भगवान के संतुष्ट के लिए करते हैं, दास 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 के भाव में, ये तीनों गुणों से परे दिव्य शुद्ध प्रेमय भक्ति में सेवा है। और हर कोई हम में से अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करना है तो हमें इस गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। कभी कभी भक्त कहते हैं इस बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ हरे कृष्ण जप करो और सब कुछ हो जाएगा। ये सत्य भी है, लेकिन भक्ति संत ठाकुर कहते हैं अनेक लाखों जन्म लग सकते हैं उसके लिए, होगा लेकिन लाखों जन्म लगे, तो इसलिए हमें इन गुणों को आत्मसात करना पड़ेगा, इन गुणों के ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ये महान ग्रंथ और इतिहास, महान इतिहास और इतने सारे गुण हमें ये बताने के लिए सीखने लगे किस तरह से हमें जीना चाहिए, इस तरह की जिस तरह हम हरे कृष्ण प्रकार जप कर परम ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। भागवतम हमें बताता है कि अगर हम सत्वगुण पर नहीं आते तो हम उन गुणों के परे नहीं जा सकते। सत्वगुण एकमात्र अनेक जन्म जन्म के बाद, लेकिन जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, जब हम हमें कृष्ण को परम ध्येय बनाते हैं, एक सत्य गुण जो है एक लॉन्चिंग पैड की तरह है जो हमें आध्यात्मिक जीवन में लेके जाता है। लेकिन हमें पास एक गुण अगर नहीं होंगे, अगर हम प्रार्थना नहीं करते और तपस्या नहीं करते इन गुणों को आत्मसात करने के लिए, तो हमारा गुण क्या बनेगा? ईर्ष्यालु बनने का। हमें खुद को केंद्र बिंदु रखेंगे सब चीज का। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में सोचेंगे, लोग मुझसे क्या करते हैं यही सिर्फ मुझे चाहिए, बाकी कुछ चीज का महत्व नहीं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, सही महत्वपूर्ण क्या है? कृष्ण संतुष्ट है क्या नहीं? सही महत्वपूर्ण क्या है वृक्ष के लिए? तुम्हें पत्तों को क्या करते हो वो नहीं महत्वपूर्ण, तुम आप मूल को क्या करते है? कृष्ण को संतुष्ट करना। तुम्हें वो प्रसन्न सर्व कृष्ण अमाणी मन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये भगवान संतुष्ट, भगवान को संतुष्ट करता है। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ गोस्वामी कहते हैं ये सर्वोच्च वैराग्य का तत्व है। आप स्वामी रहो या गृहस्थ रहो, पति रहो, पत्नी रहो, विद्यार्थी रहो, सर्वोच्च वैराग्य का तत्व है कि तृण से भी अधिक नम्र, वृक्ष से अधिक सहिष्णु, लोगों को माफ करने में भी, सर हर एक को आदर प्रदान करने में और खुद के लिए कोई आदर की अपेक्षा न करने, इससे द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। दूसरों के गुणों की सराहना करने और खुद के लिए अगर तिरस्कार ने भी किया किसी ने तो भी अपने आप को बचाव न करते हुए उसको स्वीकारना, लोगों के अच्छे गुणों को सराहना करना। कभी कभी भक्त एक दूसरे में दोष देखते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते कि ये एक चंद्र के ऊपर उनके दाग को देखने की तरह है। चंद्र के ऊपर दाग है लेकिन पूर्ण चंद्र बहुत ही अच्छा है, वो इतना अच्छा सुंदर प्रकाश देता है। अगर एक तपस्या है इस जगत में जो हमारे गुरु को संतुष्ट कर सकता है, प्रभुपाद को और सर्व आचार्यों को और अवतारों को संतुष्ट कर सकती है, वो तपस्या मतलब हमारी इच्छा तपस्या करने की, एक दूसरे का सहयोग कर आदर कर मदद कर एक दूसरे की सेवा कर हर कोई परिस्थिति में, ये तपस्या है। और कृष्ण को केंद्र बिंदु मानकर एक दूसरे को प्रगति करने में मदद करना, और प्रपद किस तरह से उसको करते थे। कभी कभी हंसकर, कभी कभी गुलाब जामुन देकर, जो व्यक्ति को कुछ भी मालूम नहीं कि गुलाब जामुन कितना मीठा है उतना ही सिर्फ उसको मालूम है। कभी कभी हरिनाम जप कर, एक प्रवचन देकर, पुस्तकों को लिखकर, या कभी कभी उसके ऊपर गुस्सा होकर एक वज्रपात की तरह, परंतु ये सब कुछ उस भावना में था, प्रेम की भावना में। तो राधा कंठ पद पर संदेश को हमने बहुत बार संदेश किया, उन्होंने सुंदर पुस्तक को मुझे पढ़ाई करने के लिए और बाकी लोगों को बांटने के लिए, और उन्होंने हमें पुस्तक का क्या कितनी सेव भी दिया, एक पुस्तक है एक हृदय के साथ, एक आवाज़ के साथ, नम्रता के साथ और दया के साथ, एक दूसरे को मदद करना, हेल्प करनी और जब को भी प्रगति करनी, और आध्यात्मिक जगत का सौंदर्य एक दूसरे के साथ बात कर भगवान का जप कर।
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
हमने अभी तक परिक्रमा खत्म नहीं की, हम कल जारी रखेंगे इसको। सबको धन्यवाद देता हूँ।
गिरिराज महाराज, आपको कीर्तन करने की इच्छा है?